मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 6 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने रवीश कुमार जी के माध्यम से साहस के बारे में कुछ बातें की थी और ये जानने की हम लोगों की कोशिश थी कि किस तरीके से साहस इनफैक्ट जीवन के सबसे बड़े गुणों में से एक गुण है और यही वह गुण है जो सही मायने में हमें जीवन में आगे ले जा सकता है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम साहस के थोड़े से सही अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आप सबसे इस तरह की बहुत ही जो घटनाएं घटित होती रहती हैं कि जो छोटी जगहों से लोग आते हैं, जब बड़ी जगहों पर पहुंचते हैं, या यूं कह लीजिए कि छोटी जगह से आकर के सीधे बड़े बड़े काम जिनको असाइन कर दिए जाते हैं, तो उनके मन में स्वाभाविक तौर पर एक आतंकित होने की भावना आ जाती है, यानी कि मन में भयानक किस्म की घबराहट होने लगती है और ये लगने लगता है कि नहीं, यह तो हम नहीं कर सकेंगे, यह हमसे नहीं हो सकेगा। जो दूसरे लोग हैं वे तो हमसे बहुत अधिक सुपीरियर हैं, बहुत अधिक योग्य हैं, हम तो इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, हम टिक ही नहीं सकते। इस तरह की भावनाएं आती हैं और सच पूछिए, ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूं तो यह मुझे कहना ही चाहिए कि छोटी जगहों से जब भी कोई अपेक्षाकृत बड़ी जगह पर पहुंचा है, शुरू में हरेक व्यक्ति को इस संकट का सामना करना पड़ा है दोस्तों। और ये जो संकट है ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक संकट है। कल मैंने रवीश जी के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने बकायदे स्वीकार किया है कि वो कितने भयभीत हो गए थे जब ऑफिस में गए। और सच पूछे तो अगर मैं अपने बारे में भी इजाजत दें तो कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। इतना ही पर्याप्त होगा कि जब मैं तो अपने छोटे से गांव को छोड़कर जब उस समय 50,000 की आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंबिकापुर में आया था, उस समय उसकी आबादी थी 54,000, 1975 की बात है। 54,000 की आबादी वाला शहर कितना बड़ा शहर होगा आप सोच सकते हैं। उस समय पूरे शहर में मुश्किल से व्यक्तिगत रूप से किसी के पास 2-3 कारें होंगी, कारें तो देखने को नहीं मिलती थी, बाइक जरूर आनी शुरू हो गई थी, ज्यादातर लोग साइकिल से ही चलते थे। और जब मैं कॉलेज में लेक्चरर हो गया था तब बकायदे साइकिल से ही हम लोग कॉलेज जाते थे, सभी लेक्चरर्स वहां 70-80 लेक्चरर्स थे उस कॉलेज में, बहुत बड़ा कॉलेज था और मुझे लगता है 1-2 लेक्चरर्स ही ऐसे थे लेक्चरर्स जो बाइक स्कूटर से आते थे, बाकी सब साइकिल से आते थे। स्टूडेंट भी साइकिल से जा रहे हैं, प्रोफेसर भी साइकिल से जा रहे हैं और वहां साइकिल स्टैंड जो है वो जैसे कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां साइकिलें खड़ी रहती हैं, उसी तरह से कॉलेज में साइकिल खड़ी रहती थी। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का तो सवाल ही नहीं है। मैं ये वर्णन इसलिए कह रहा हूं कि आप सोच करके देखिए कि 54,000 आबादी का एक पिछड़ा हुआ मुख्यालय कितना अधिक आतंक आपके दिमाग में पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, उस समय उस छोटे से शहर का, जिसमें इससे पहले भी मैं कई बार आता जाता रहता था, मेरे लिए बिल्कुल अननोन शहर नहीं था, उस शहर में मेरी 3-3 बुआएं ब्याही हुई थीं, उनके यहां मैं जाता था, भोजन करता था, हमारे फूफा जी लोग थे, सब लोग थे, मतलब जान पहचान के लोग थे, वहां मैं बिल्कुल अकेला भी नहीं था, मेरे चाचा चाची वहां रहते थे। इसके बावजूद मुझे उस शहर ने आतंकित कर दिया था। और सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद जब बड़े शहर जाना पड़ा तब तो बस पूछिए मत, लग रहा था जैसे कि जिंदगी बर्बाद हो गई, अब जिंदगी में रह ही क्या गया है, कैसे हम इन सब का मुकाबला करेंगे। वहां देखिए जितने भी लोग थे, जितने भी प्रोफेशनल्स थे, सब ज्यादातर लोग उसमें ढूंढने से कोई मिलता, दूसरी भाषा बोलने वाला सब अंग्रेजी बोलते थे, बहुत से लोग बहुत ऊंचे परिवारों से थे, बहुत से लोगों के जो संस्थान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे और सच पूछे तो उनका लेवल ऑफ नॉलेज भी कम नहीं था क्योंकि उनके सामने एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। अब आप कल्पना करके देखिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो जब जिस रवीश जी ने जिस स्थिति की चर्चा की है मित्रों, वही आप सब भी अभी झेल रहे हैं। मैं जानबूझकर के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, झेल रहे हैं। अब इसे कैसे झेल पाएंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका। अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मैं भागूंगा तो नहीं, मैं छोड़ करके तो नहीं जाऊंगा, जो स्थिति मेरे सामने है मैं उसका मुकाबला करूंगा। मैं अभी तक छोटी जगह में रहा हूं, गांव में रहा हूं, अंग्रेजी नहीं आती है, या जो भी मेरा परिवेश रहा है, याद रखिए ये आपकी कमी नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। ये आपकी ऐसी संपत्ति है जो उनके पास नहीं है, जिनसे आप भयभीत हो रहे हैं। ये आपकी संपत्ति है, यह आपकी कमजोरी नहीं है। लेकिन चूंकि जरूरतें कुछ दूसरी हो गई हैं, इसलिए आपके मन में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, हीनता की भावना आ रही है कि नहीं, हम इनसे छोटे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समाज के अपने मापदंड हैं, वो आपको शायद इसी नजर से देख रहे हो, लेकिन आप सबके पास यह एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने आप को मजबूत बना सके। देखिए, अगर अवसर नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम में से कोई भी अपने को मजबूत बनाने के बारे में नहीं सोचेगा, अपने को बदलने के बारे में नहीं सोचेगा। और यदि आपने ठान लिया तो आप ऐसा कर लेंगे, और यदि आपने ठान लिया और ऐसा करने लगे तो दोस्तों इसी का नाम है साहस। देखिए, साहस कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, साहस मूलतः एक मानसिक शक्ति है। इस बात की मानसिक शक्ति कि जो भी संकट आपके सामने आया हुआ है उसे आप कितनी देर तक झेल सकते हैं, और बड़े सकारात्मक रूप में झेल सकते हैं। नकारात्मक रूप में नहीं कि भैया चलो अब तो करें क्या, तो ठीक है जो हो रहा है होने दो, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं इसे बदलूंगा। और देखिए, जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है मित्रों, हम सब ने उसको बहुत बुरी तरह से झेला है, बहुत गहराई में जाकर जिया है। ये मत सोचिए कि आज आपको जो बहुत बड़े बड़े सफल लोग दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं थी। सच पूछिए तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, और माफी चाहूंगा ये वाक्य कहने के लिए, कि जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो जीवन के लिए कहीं ना कहीं वरदान होता है। ये हमारे जीवन का वरदान है, क्योंकि जब तक हम अपने को इन्फीरियर नहीं मानेंगे तब तक हम सुपीरियर बनने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। तो हम अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त कैसे हो सकते हैं? याद रखिए कि काम करके, कर्म के जरिए, जिन जिन चीजों में हमें इन्फीरियॉरिटी महसूस हो रही है उस पर काम करना शुरू कर दें। एक साल, दो साल, बस ज्यादा नहीं, आप देखेंगे कि आप हीनता से मुक्त हो गए हैं और अब आप उनके मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वे तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो अपने को सुपीरियर मान रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि आप ये मान करके चल रहे हैं कि बाप रे बाप, मुझे तो इतना करने की जरूरत है। यानी कि आप अपने अंदर उन गुणों को लाकर जिनकी कमी की वजह से इन्फीरियॉरिटी महसूस हो रही है, आप अपने इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो सकते हैं। और मित्रों, एक बार यदि आप इससे मुक्त हो गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो रफ्तार होगी जिंदगी की और आपकी जिंदगी की जो ऊंचाई होगी वो दूसरे लोगों से बेहतर होगी। आप विश्वास कीजिए कि पानी की एक बहुत ही प्रबल और निर्मल धारा बहने का इंतजार कर रही है, वह आपके अंदर बह रही है, लेकिन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चट्टान ने उस धारा के सामने आकर उसके प्रवाह को रोक दिया है। अब कोशिश आपको करनी है कि इस चट्टान को तोड़ तोड़ कर उस धारा को रास्ता दे दें, और यदि इस धारा को रास्ता मिल गई तो आपके अंदर से जो प्रबल छलछलाती हुई धारा बहेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मित्रों, यही है कुल मिलाकर साहस। और मेरा विश्वास है कि आप जरूर इस बात को ठानेंगे कि नहीं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, पीठ पर मेरे कोड़े पड़े, आघात पड़े, मैं उन्हें बर्दाश्त करूंगा, और साथ ही साथ इन कोड़े और इन आघातों को सकारात्मक रूप में लेकर इन्हें अपनी शक्ति में तब्दील कर दूंगा। और ऐसा आप कर सकते हैं, लोगों ने ऐसा ही किया है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।